वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के कार्यक्रम में। आप लोगों को याद रहेगा कि पिछले रविवार को हमने एक शीर्षक लिया था हमारी चर्चा के लिए, आध्यात्मिक शिक्षाएं वर्षा ऋतु से, जिसके विषय में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कि कौन कौन से प्रतिकूल एवं अनुकूल शिक्षाएं हम वर्षा ऋतु से ले सकते हैं। केवल हम जब वर्षा ऋतु में भ्रमण करते हैं और वर्षा ऋतु का मुआयना करने मात्र से हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि इस प्रकार से बनाई है कि इस सृष्टि का हर एक अंग हमें भगवान के निकट ले जाता है, चाहे वो इस भौतिक सृष्टि का कोई प्रतिकूल अंग हो या कोई अनुकूल अंग हो। यह हमारे ऊपर है कि हम उससे क्या शिक्षा ले सकते हैं। उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक चाकू जो होता है उससे किसी की जान बच सकती है और उससे किसी की जान ली भी जा सकती है, तो उसी प्रकार से ये भौतिक संसार, हालांकि भगवान बताए हैं कि दुखालय है और अशाश्वत है, परंतु इसके साथ साथ भगवान के भक्त इसी दुखालय और अशाश्वत जगत से ऐसे ऐसे प्रसंग लेकर हमें शिक्षा देते हैं जिनसे हम इसी कारागृह से बाहर निकल पाएं। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन करते हुए ये शिक्षाएं दे रहे हैं कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की भावना में केवल इन ऋतुओं को देखते हुए कैसे जाएं। तो पिछले हफ्ते हमने वर्षा ऋतु से कौन सी शिक्षाएं ली थी? प्रतिकूल, और कितने? 10 प्रतिकूल शिक्षाएं। तो हमारा प्रयोजन था कि कम से कम ये पूरा हफ्ता, यदि आपने वर्षा ऋतु के कुछ घटनाओं या प्रसंगों को देखा होगा तो कुछ शिक्षाएं ली होंगी जो याद होंगी शायद, जो आपने पिछले हफ्ता सुनी। कितने भक्त थे पिछले रविवार को, हाथ ऊपर कीजिए। और आप में से कितनों ने पिछले हफ्ते जो शिक्षाएं आपने सुनी उसके संदर्भ में आपका दृष्टिकोण रखा? ठीक है, आप शर्मा रहे हैं शायद, तो मन में हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो 10 प्रतिकूल एवं 10 अनुकूल शिक्षाएं, और आज हम 10 अनुकूल शिक्षाएं कौन सी हैं इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें हमारी भक्ति को भगवान के अनुकूल बनाना है। इसलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी वो भक्ति रसामर सिंधु में कहते हैं, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तम भक्ति वो है कि जो ज्ञान और कर्म से रहित, जो बिना किसी अभिलाषा के की जाए और जो भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो। तो इसलिए हमें हमारी भक्ति में ये देखते रहना है कि चाहे प्रतिकूल स्थिति भी क्यों ना आए, उसमें से अनुकूल शिक्षाएं हम क्या ले सकते हैं। अब ज्यादातर हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में कुछ एक लोग प्रसन्न रहते हैं, जैसे किसान हो गए या और कुछ लोग होंगे, परंतु ज्यादातर जो शहर में काम करने वाले वो वर्षा ऋतु को इतने अनुकूल भाव से नहीं लेते। परंतु सुखदेव गोस्वामी यहां पर हमें हमारा धंधा कैसा अच्छा चलता रहे वर्षा ऋतु में, इसके विषय में नहीं बता रहे कि कौन से अनुकूल भाव से वर्षा ऋतु में आपका धंधा शुरू करें आप। सुखदेव गोस्वामी यहां पर हमें भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल कैसे हमारी भक्ति बने, इसके संदर्भ में शिक्षाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहली अनुकूल शिक्षा कि वर्षा का जल उसकी सबसे स्वच्छ स्थिति है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने चर्चा की कि वर्षा का जो जल है, हालांकि सबसे स्वच्छ जल है वो, परंतु प्रदूषण होने की संभावना उसमें रहती है। परंतु यदि हम वो प्रदूषण होने की संभावना को न लेकर केवल यदि इस पर गौर करें कि वर्षा का जो जल है वो उसकी सबसे स्वच्छ स्थिति है, वैसे ही हमारी जो चेतना है, हमारी चेतना वो अपने सबसे स्वच्छ स्थिति में कब रहती है। यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि जो वर्षा का जल है वो अपने सबसे स्वच्छ स्थिति में कब रहता है, हाँ, बादलों में, तो जब वो बादलों के संपर्क में रहता है तो वर्षा का जल अपने सबसे स्वच्छ स्थिति में रहता है। तो यहां पर तुलना की गई है कि जब चेतना उस घनश्याम के संपर्क में हर समय रहेगी, जिनका रंग भी वर्षा के बादल के समान है, तो जब जीव की चेतना भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक नाम है घनश्याम, जब उनके संपर्क में बनी रहेगी, तब जाकर ये चेतना हर समय स्वच्छ बनी रहेगी। श्रील प्रभुपाद लंदन में अपने मॉर्निंग वॉक पर थे और एक गार्डन में अपने शिष्यों के साथ वो सुबह की सैर पर निकले, तो उन्होंने अपनी छड़ी से शिष्यों को दिखाया, कुछ घास उगी हुई थी तो कुछ घास को दिखाया, हरी हरी घास थी, तो श्रील प्रभुपाद ने दिखाया, देखो घास। अब साधारणतः और कोई व्यक्ति यदि घास दिखाता तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती, घास क्या देखना है और उसमें दिखाना क्या है घास को। तो सभी जानते थे कि श्रील प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक पर श्रील प्रभुपाद जो कुछ दिखाते या कहते उसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य होता। तो जब श्रील प्रभुपाद ने घास दिखाई तो सभी आपस में चर्चा करने लगे कि इसके पीछे क्या गूढ़ रहस्य होगा, घास, सोच विचार करना चाहिए इसके ऊपर। तो सभी आपस में चर्चा करने लगे कि शायद श्रील प्रभुपाद हमें ये सिखाना चाहते हैं कि घास की तरह नम्र हमें बनना है, तृणादपि सुनिचेन। तो श्रील प्रभुपाद ने कुछ विश्लेषण नहीं किया, आगे गए और आगे श्रील प्रभुपाद कुछ और घास को देखे और फिर श्रील प्रभुपाद ने उस घास को दिखाया। वो थोड़ी घास पीली पड़ गई थी, पहली बार जो घास दिखाई थी वो घास हरी थी, दूसरी बार जब दूसरी घास को दिखाया श्रील प्रभुपाद ने तो वो घास पीली पड़ चुकी थी। तो श्रील प्रभुपाद ने अब वो पीली घास दिखाई और पूछा कि घास देखी पीली हो गई। तो अब सभी शिष्य सोचने लगे कि पहले हरी घास दिखाई, अब ये घास पीली हुई हुई दिखाई है, क्या इसके पीछे तात्पर्य है। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि क्या समझ में आया आप लोगों को। तो एक शिष्य वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब घास बूढ़ी हो जाती है तो पीली हो जाती है, तो वैसे ही जब इस भौतिक संसार में ये जो शरीर है वो शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो रोगी हो जाता है और हरा भरा नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं। तो अलग अलग शिष्य अपने अलग अलग तात्पर्य दे रहे थे, परंतु श्रील प्रभुपाद ने कहा कि वो घास हरी इसलिए है क्योंकि वो उसकी जो जड़ है वो भूमि के संपर्क में है, और ये दूसरी घास जो पीली पड़ चुकी है ये पीली इसलिए पड़ चुकी है कि इसकी जो जड़ है वो भूमि के संपर्क से छूट गई है, इसलिए वो घास पीली पड़ गई। आपने देखा होगा कि घास को यदि कोई उखाड़ देता है, उखाड़ कर घास को यदि कहीं पर रख दो तो वो घास धीरे धीरे वो पीली पड़ जाती है। तो श्रील प्रभुपाद ने यही कहा कि जब जीव की चेतना भगवान के संपर्क में रहती है तो उसकी चेतना हरी भरी बनी रहती है, परंतु जैसे ही भगवान के संपर्क से वो चेतना छूटी तो वैसे ही वो चेतना पीली पड़ने लगती है। तब सभी शिष्यों ने प्रभुपाद की तरफ देखते हुए कहा जय प्रभुपाद। फिर आगे गए प्रभुपाद और सर्दी का मौसम था, ये लंदन के रीजेंट्स पार्क की बात है, तो वहां पर बर्फ पड़ती है सर्दी के मौसम में, और छोटे छोटे से कुंड थे पानी के जो कि सर्दी के वजह से, सर्दी के मौसम के वजह से उन पर बर्फ की सतह जम गई थी। तो श्रील प्रभुपाद जैसे ही ये छोटे छोटे कुंडों को देखते उनके पास भागते हुए जाते और अपनी छड़ी से उस बर्फ की सतह को तोड़ते, और जैसे ही बर्फ की सतह को तोड़ते तो अंदर का जो पानी जो नहीं जमा हुआ था वो उस बर्फ की सतह, टूटी हुई सतह से बाहर निकलता। और श्रील प्रभुपाद बार बार ऐसा कर रहे थे। तमाल कृष्ण महाराज वो श्रील प्रभुपाद के साथ थे तो उन्होंने सोचा प्रभुपाद आज बच्चों की तरह, बच्चे ये सब काम करते हैं। प्रभुपाद भागते हुए जाते और अपनी छड़ी से उस बर्फ की सतह को तोड़ते। तो तमाल कृष्ण महाराज समझ गए कि श्रील प्रभुपाद जो भी कुछ कर रहे हैं इसके पीछे कुछ रहस्य होगा, तो पूछ लिया प्रभुपाद क्यों आप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या शिक्षा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जीव की चेतना शुद्ध जल के समान है, परंतु जब वो इस भौतिक संसार में जीव आता है तो वही शुद्ध जल वो इस भौतिक संसार के संपर्क में वो बर्फ की तरह एकदम कष्टा हो जाता है, और पानी का जो असली स्वरूप है वो खो बैठता है। तो जीव अपना असली स्वरूप खो बैठता है, जैसे पानी सर्दी में अपना असली स्वरूप खो बैठकर बर्फ बन जाता है, और इसलिए उसे अपने असली स्वरूप में लाने के लिए उसकी जो ऊपर की जो सतह है उसे तोड़ना होगा। तो जब जीव की चेतना को उसकी अप्राकृतिक स्थिति से तोड़कर उसे उसकी प्राकृतिक स्थिति पर जब लाओगे, तब जाकर उसका असली स्वरूप दिखने को मिलेगा। तो श्रील प्रभुपाद इन प्रसंगों से ये शिक्षा दे रहे थे कि जीव की चेतना जो है वो इतनी शुद्ध है, परंतु माया का प्रभाव इस भौतिक संसार में इतना गहरा है कि उस शुद्ध चेतना के ऊपर भी आवरण आ सकता है। परंतु श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त अपनी छड़ी से जब उस आवरण को तोड़ते हैं, तब जाकर जो असली स्वरूप है उस चेतना का वो उजागर होता है। तो इसलिए यहां पर सबसे पहली शिक्षा हमें ये मिल रही है कि हमारी भी चेतना उस वर्षा के जल के समान सबसे स्वच्छ स्थिति में हो सकती है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने सुना कि स्थिति अब ऐसी है कि इस भौतिक संसार में यह शुद्ध जल प्रदूषित हो चुका है, परंतु फिर से यह शुद्ध हो सकता है। यह जल कैसे कैसे वही जल जो है फिर से शुद्ध हो सकता है, हालांकि इस पृथ्वी के संपर्क में वर्षा का जल आ जाता है, परंतु वही जल जब नदियों में बहता हुआ फिर से समुद्र में जाता है और समुद्र से वाष्प में परिवर्तित होकर फिर से जब वो बादल के संपर्क में जाता है तो वो पुनः शुद्ध हो जाता है। तो वैसे ही इस भौतिक संसार में हम लोग हैं, परंतु फिर से जब हम हमारा संपर्क उन घनश्याम से स्थापित करते हैं, तब फिर से हमारी जो शुद्ध स्थिति है उसका अनुभव हम करने लगते हैं। तो ये सबसे पहली शिक्षा हमें वर्षा के शुद्ध जल से मिलती है। वर्षा का जो शुद्ध जल है उसमें एक गुण है, दूसरों के स्वच्छता एवं जीवन शक्ति का आधार बनता है वो वर्षा का जल। ऐसा नहीं कि वो वर्षा का जल केवल अपने आप में अपनी शुद्धता लेकर बैठा है, परंतु हम सब जो रोज अपने आप को बाहरी रूप से स्वच्छ करते हैं और आंतरिक रूप से उसी जल को पीकर शक्ति का अनुभव करते हैं, ये वर्षा के जल का एक बहुत ही विशेष गुण है। और ये विशेष गुण वर्षा के जल की स्वच्छता का गुण है। तो वैसे ही वो चेतना जिसने अपने आप को शुद्ध बना लिया है, परंतु वो चेतना जब दूसरों के संपर्क में आती है, जैसे कि वही शुद्ध जल वर्षा का, जब हम मनुष्यों के संपर्क में वो जल आता है तो हमें स्वच्छ करता है, हमें वो शक्ति प्रदान करता है। और किसे भी, जैसे मछलियां जो हैं वो तो उसी जल में जीती हैं, वो क्या कविता थी हमारे बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बस इतना तक ठीक है, जीवन उसका पानी है। तो हमारा भी जीवन यही पानी है, यही स्वच्छ वर्षा का जल। वैसे ही जब एक शुद्ध भक्त की चेतना किसी के संपर्क में आती है तो उसकी अशुद्ध चेतना को स्वच्छ बनाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब वो पाश्चात्य देश गए तो उन्होंने अपने साथ कोई पैसे या कोई भौतिक सुख सुविधा लेकर नहीं गए थे वहां पर उस देश को सुधारने के लिए। श्रील प्रभुपाद के पास कौन सा वो शस्त्र था जिसके कारण ये पूरी इस्कॉन संस्था और इतने सारे इसमें सदस्य अब अपना इतना शुद्ध जीवन जी रहे हैं? शस्त्र था श्रील प्रभुपाद की शुद्धता। और जब श्रील प्रभुपाद की शुद्धता के संपर्क में ये लोग सब आए, सोचिए जमुना माता जी वो अब ऐसा जीवन जीती हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसा शुद्ध जीवन। परंतु जब वो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आई तो उनकी बहन जानकी देवी, वो पहले प्रभुपाद के संपर्क में आई, जानकी देवी और मुकुंद इनका विवाह हुआ था, तो इनके इनका विवाह श्रील प्रभुपाद ने कराया। मुकुंद और जानकी इनका विवाह श्रील प्रभुपाद ने कराया और श्रील प्रभुपाद ने जानकी माताजी से कहा कि तुम्हारे विवाह में तुम्हारे कोई घर वाले आने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि वहां पर इतना कुछ रिवाज नहीं कि विवाह में घर वालों को भी आना चाहिए। जैसे भारत में जब विवाह होता है किसी का तो पूछना पड़ता है वर वधू कहां है, क्योंकि बाकी लोग इतने सज संवर कर आते हैं कि पता नहीं लगता है कि विवाह किसका हो रहा है। इतने लोग आते हैं एक तो, और इतना सज संवर कर आते हैं। कई बार मैं बचपन में किसी विवाह में जाता तो धोखा कर जाता था कि विवाह किसका हो रहा है, क्योंकि कई बार वर वधू के माता पिता ज्यादा सज कर बैठे रहते थे। श्रील प्रभुपाद ने जानकी माता जी से पूछा कि तुम्हारे कोई परिवार वाले, तो उनकी बहन जमुना माता जी उस समय तो वो इस्कॉन के संपर्क में नहीं आई, तो वो आई। तो श्रील प्रभुपाद ने जिस दिन विवाह था उस दिन बड़ा फीस्ट प्रभुपाद ने ही बनाया। सोचिए क्या सौभाग्य कि इनके विवाह का फीस्ट श्रील प्रभुपाद ने अपने हाथों से बनाया। तो श्रील प्रभुपाद ने जानकी माता जी की बहन इनको कहा कि तुम्हें कुछ खाना बनाना आता है? इनको तो कुछ आता नहीं था खाना वाना बनाना। और श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा, तुम केवल, क्योंकि मुझे कम से कम 20-25 आइटम बनाने हैं इनके विवाह के लिए, तो मुझे तुम केवल सहायता करना, मैं जो कहूंगा वो सब करना। तो सबसे पहले तो ये जानकी माता जी की जो बहन ये आई थी टी शर्ट और मिनी स्कर्ट में, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, वो पूछे कि मैं ऐसे चलूंगा आएंगी आऊंगी तो प्रभुपाद ने कहा अब मैं क्या कह सकता हूं। और फिर क्योंकि शुद्धता के कोई संस्कार तो इतने उस समय मिले नहीं थे कि कैसे पकाया जाए, और किस चेतना तो दूर की बात है कि शारीरिक रूप से कितनी शुद्धता होनी चाहिए, कि एक तो नहा धोकर आना चाहिए और जो भी कुछ बोला जाए करने के लिए वो साफ हाथों से। तो हर बार श्रील प्रभुपाद इनको कहा करते थे ठीक है अब ये कर दिया अब जाकर अपने हाथ धो, तो इनको लगते है बार बार हाथ धोने के लिए क्यों बोल रहे हैं। और यहां तक स्थिति थी कि इन्होंने श्रील प्रभुपाद को बीच में पूछा कि मुझे थोड़ा सिगरेट पीने की इच्छा हो रही। सोचिए भगवान का भोग बन रहा है और ये पूछ रहे हैं मैं जाके बाहर थोड़ा सिगरेट पी सकती हूं। तो श्रील प्रभुपाद उस समय इतने सहनशील थे, श्रील प्रभुपाद ने कहा जाओ हाथ मुंह धो के आना, यहां तक सहन किया। तो ये आगे चलकर जमुना माता जी लिखती हैं, इन्होंने फिर वो पुस्तक लिखी कुक बुक ऑन द वेजिटेरियन कुक बुक, जिसे बहुत इनाम मिला। और ये आगे चलकर लिखती हैं कि उस समय इन्होंने श्रील प्रभुपाद की जो प्योरिटी और शुद्धता को देखा, श्रील प्रभुपाद की शुद्धता को देखते हुए इनका हृदय परिवर्तित हुआ। किस व्यक्ति को क्या लेना देना है हमारे परिवार से, कि ये व्यक्ति एक तो सन्यासी, वो भी भारत से आया हुआ, और ये मेरी बहन का विवाह करा रहा है, और स्वयं वहां पर कभी ये नहीं देखा गया था कि किसी चर्च का जो प्रीस्ट है वो वर वधू के लिए उनके शादी का फीस्ट बना रहा है। तो श्रील प्रभुपाद इतना सब कुछ कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद की शुद्धता को देखते हुए इनका हृदय परिवर्तित हुआ। श्रील प्रभुपाद ने कोई बहुत बड़ा प्रवचन इनको नहीं दिया, और श्रील प्रभुपाद के प्रवचन 20 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ करते थे। और जितने भी श्रील प्रभुपाद के शिष्य जब वो श्रील प्रभुपाद को याद करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण वो श्रील प्रभुपाद की शुद्धता को याद करते हैं। इसलिए यहां पर जब हम ये शिक्षा लेते हैं वर्षा के जल से, कि जैसे एक वर्षा का जल दूसरों को स्वच्छ करता है और जीवन शक्ति का आधार बनता है, उसी प्रकार से यदि एक भी व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं एक भारतीय पाश्चात्य देश में आया और कृष्ण भक्ति फैलाने का मैंने प्रयास किया, तो सोचिए श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे कि यदि ऐसे कितने भारतीय यदि अपनी शुद्ध चेतना से आएंगे सारे विश्व में, इस कृष्ण भावना को फैलाएंगे, तो ये पूरा विश्व गोलोक धाम बन सकता है। तो ये हम एक शुद्ध भक्त की चेतना से भी सीख सकते हैं और शुद्ध वर्षा के जल से भी सीख सकते हैं। तीसरी शिक्षा कि वर्षा का जल बूंदों में गिरता है, बूंदों में बरसता है, छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बड़ी नदियां, सरोवर, यहां तक कि समुद्र निर्माण हो सकते हैं। ये सारी नदियां, सरोवर और समुद्र है क्या? ये एक एक बूंद से ये सब जलाशय बने हैं। तो वैसे ही जब एक शुद्ध भक्त जब वो किसी बद्ध जीव के संपर्क में आता है और उसे शुद्ध बनाता है, और ऐसे शुद्ध भक्त जब बद्ध जीवों के संपर्क में आते हैं, तो वही फिर से हम श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने अपनी शुद्धता को जब दूसरों को दिया धरोहर के रूप में, तो ऐसे करके एक एक करके एक एक करके ये जो बूंद बढ़ती गई, और हम देखते हैं कि अब कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्तों का समुद्र, कृष्ण भक्तों का सरोवर सारे विश्व में देखने मिल रहा है, क्योंकि एक शुद्ध बूंद, उस एक शुद्ध बूंद ने अपने आप को अलग अलग शुद्ध बूंदों में विस्तारित किया। और इसके विपरीत उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक कंजूस व्यक्ति, रूप गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं कि जैसे कंजूस व्यक्ति वो कितनी देखभाल कर अपने पैसों को सुरक्षित रखता है, जैसे वो एक एक कौड़ी को अपने गुल्लक में डाल डाल कर बढ़ाता है, उसे 5 पैसा 10 पैसा 25 पैसा 50 उसको इस प्रकार से डाल डालकर बढ़ाता है। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त थोड़ी थोड़ी भक्ति कर उसे जमा करता है, जैसे कि कंजूस व्यक्ति। एक बार एक व्यापारी था, कंजूस, कौड़ी चुंबक खिताब मिला था इसे। तो ये व्यापारी अब अपने मृत शैया पर लेटा हुआ था, तो मृत छैया पर लेटा है, अब बस कुछ चंद सांसें बाकी है इसके मरने की। तो अब देखता है कि परिवार के सारे सदस्य वहां पर उपस्थित हैं कि नहीं, तो पूछता है, अरे छोटू की मां तुम कहां हो? तो छोटू की मां खड़ी हो जाती है, मैं यहां। तो कि वो पूछता है कि वो बड़ा वाला रतन है कि नहीं, वो कहां है? तो रतन सामने आता है, भाऊजी मैं यहां खड़ा हूं, मैं आपके बगल में। तो पूछता है, और वो मंझला वो बीच वाला वो संजू कहां है? तो संजू भी आ जाता है, भाऊजी मैं भी यहां पर आपके बगल में खड़ा हूं। और वो छोटा वाला किशन वो किधर गया? तो किशन भी भाग के आता है, भाऊजी मैं भी आपके यहीं पे बगल में खड़ा। अरे सब यहां खड़े हो, दुकान पर कौन है? तो रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि कंजूस व्यक्ति उसकी चेतना हर समय, इस उदाहरण को लेते हुए रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि जैसे कंजूस व्यक्ति अपने नोट कैसे गिनता है, नोट गिनते समय वो यहां वहां अपना अपना ध्यान भ्रमित होने नहीं देता। कभी आपने देखा होगा कि जब कोई नोट गिनता हो उसको जाकर आप पूछो, और कैसे हो आजकल? मानो 100 की गड्डी गिन रहा है और उसको जाकर आप पूछो कि कैसा आज दिन कैसा गया, तो देखना भी नहीं चाहेगा, सुनना भी कुछ नहीं चाहेगा। तो रूप गोस्वामी देखिए बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि जैसे कंजूस व्यक्ति नोटों की गड्डी को कैसे गिनता है, वैसे शुद्ध भक्त भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अर्थ ये नहीं कि कल से हम जब माला हाथ मिले तो नोटों की गड्डी याद आए। कि ध्यान बिल्कुल केंद्रित नहीं करता वो व्यक्ति, तो वैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारा जप होना चाहिए। तो यहां पर फिर से यदि हम श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लें, तो श्रील प्रभुपाद ने कई ऐसे जगहों पर श्रील प्रभुपाद गए और केवल एक दो व्यक्तियों को प्रचार किया। जैसे रशिया में श्रील प्रभुपाद केवल दो व्यक्तियों से मिले और वो भी कुछ घंटों के लिए। एक ही बार श्रील प्रभुपाद गए रशिया में और कोई मंदिर नहीं, कोई सत्संग कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था उनके लिए, कोई महा सत्संग कार्यक्रम या पंडाल प्रोग्राम या गीता कोर्स कुछ नहीं। और ये दो व्यक्ति भी श्रील प्रभुपाद के जो निजी सेवक श्याम सुंदर प्रभु को सब्जी खरीदने की लाइन में, वहां पर सब्जी खरीदने की लाइन लगती थी क्योंकि सब्जियां ही नहीं उगती वहां पर, तो लाइन में खड़े होकर सब्जी ले रहे थे, तो दो व्यक्ति दिखे, उनमें से एक भारतीय था एक रशियन था, और उनमें से एक ने श्याम सुंदर प्रभु को पहचान लिया कि ये शायद हरे कृष्णा से हैं। तो श्याम सुंदर प्रभु इन दोनों को श्रील प्रभुपाद से मिलाने के लिए लाए, सब्जी के साथ इन दोनों को भी लाए। तो श्रील प्रभुपाद ने कुछ एक दो घंटे इनके साथ बातचीत की और इनमें से जो रशियन था वो इतना प्रभावित हुआ श्रील प्रभुपाद से कि उस एक व्यक्ति ने, आज भी वो भक्त हैं वहां पर, वो एक भक्त ने रशिया में श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद प्रचार प्रारंभ किया। और आज हमारे इस्कॉन संस्था के सबसे ज्यादा भक्त किसी देश के हैं तो वो हैं रशिया के। 1000,000,000 की संख्या में। और शुरुआत कहां से हुई? श्रील प्रभुपाद जो एक शुद्ध बूंद किसी दूसरे व्यक्ति को शुद्ध बनाकर गए और वो व्यक्ति धीरे धीरे प्रचार कर अब वहां पर भक्तों का समुद्र, इतने सारे भक्त वहां पर हैं और उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में भक्ति कर रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे शुद्ध चेतना के संपर्क में जब कोई बद्ध जीव आता है तो कैसे वो भी शुद्ध बनता है और उसकी शुद्ध चेतना के वजह से और कितने शुद्ध बन सकते हैं, और फिर जैसे बूंद बूंद से बनती है नदी सरोवर और बड़े बड़े समुद्र। इसलिए वर्षा के बूंदों को हमें साधारण तौर पर नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार से जब एक शुद्ध भक्त इस धराधाम पर आता है तो उस शुद्ध भक्त को भी साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। एक बार एक टीवी इंटरव्यू श्रील प्रभुपाद का लिया जा रहा था, तो ये जो टीवी इंटरव्यू होते हैं इसमें जो इंटरव्यू लेता है उसे पहले ही बताया जाता है कि तुम्हें कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, और जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसे भी बताया जाता है कि तुम्हें कैसे उत्तर देना है। तो एक प्रकार का जैसे नाटक होता है, नाटक के डायलॉग सब रट कर, तो वैसे प्रश्न रटे हुए होते हैं, उत्तर रटे हुए होते हैं, और फिर कैमरा के सामने ये प्रश्न उत्तर चलता है, इंटरव्यू, भेंट वार्ता जिसे कहते हैं। अब श्रील प्रभुपाद को तो उत्तर रटने की आवश्यकता थी नहीं, तो जो इंटरव्यूअर था, जो प्रश्न पूछने वाला था, उसने अपने सारे प्रश्न रटे हुए थे कि आप यहां पर आए, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं हम अमरीकी लोगों से, और आपका धर्म हमें क्या सिखाना चाहता है, ये सारे प्रश्न लिख रखे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने एक दो प्रश्न उसने पूछे, श्रील प्रभुपाद लंबा लंबा उत्तर देने लगे, और श्रील प्रभुपाद को पता नहीं था कि उसके उसकी सूची में और भी बहुत प्रश्न है। तो उसने एक दो प्रश्न पूछे और श्रील प्रभुपाद उसे उंगली दिखाकर, तो समझ में आ रहा है तुम्हें, तो इसने कहा हाँ हाँ समझ में आ रहा है मेरा अगला प्रश्न। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने उत्तर दिया इसे अपने जीवन में केवल समझो नहीं, उतारो। तो उसके अब काफी प्रश्न रह गए थे, तो टाइम पूरा हो गया इंटरव्यू का, तो वहां पर वो टीवी कंपनी ने कहा कि बस हो गया, इतना ही हम दिखा सकते हैं, हमारे पास इतना ही समय है। तो कैमरा ऑफ हो गया, लाइट्स ऑफ हो गया, और ये व्यक्ति ने कहा श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद ने कहा लेकिन मेरा उत्तर खत्म नहीं हुआ, तुम बैठो। श्रील प्रभुपाद को ना तो कैमरा से मतलब था, वो ना प्रोग्राम से मतलब था। श्रील प्रभुपाद ने देखा एक बद्ध जीव मुझे प्रश्न पूछ रहा है, इस बद्ध जीव का उद्धार मैं कैसे करूं। तो उसने कहा प्रोग्राम खत्म हुआ। अरे प्रोग्राम गया भाड़ में, मुझे तुम चाहिए। और फिर एक घंटे तक उस व्यक्ति को पूरा फिलॉसफी सुनाया और उसे अब समझ में आया तुम्हें। उसने हाँ अब पूरा समझ में आया। तो श्रील प्रभुपाद ये नहीं देखते थे कि कहां पर वो प्रदर्शित हो रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं। कोई बद्ध जीव सामने आया है, उस बद्ध जीव को कृष्ण भावना भावित बनाना। तो ये एक शिक्षा हम वर्षा के जल से ले सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर शिक्षा सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं परीक्षित महाराज को। मूसलाधार वर्षा से पर्वतों की चोटियां धुलकर साफ हो जाती है। ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब भगवान के भक्त के जीवन में परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो वो मूसलाधार वर्षा के समान है। जैसे कि जब मूसलाधार वर्षा होती है तो ये देखा गया है कि हो सकता है कि पर्वतों के ऊपर बहुत जोर से ये वर्षा का जल गिर रहा हो, परंतु जितनी जोर से वर्षा का जल पर्वतों के ऊपर गिरता है उतनी जल्दी और उतनी ज्यादा मात्रा में वो पर्वत शुद्ध होते हैं। इसलिए मूसलाधार वर्षा के पश्चात पर्वत एकदम शुद्ध और हरे भरे दिखते हैं। वैसे ही एक शुद्ध भक्त के जीवन में जब भगवान कोई कठिनाई भेजते हैं तो वो कठिनाई मूसलाधार वर्षा के समान है जो उस शुद्ध भक्त को और शुद्ध करने के लिए भेजी गई है। महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। महाविपत्तौ संसारे, जब महाविपत्ति किसी भक्त के जीवन में आती है तो वो भक्त करता क्या है, यस्मरेत मधुसूदन, वो भगवान को दोषी नहीं ठहराता, वो उंगली भगवान की तरफ नहीं करता, बल्कि वो भगवान का स्मरण करता है। कुंती महारानी जैसे प्रार्थना भी कर सकते हैं कोई भक्त कि मुझे और विपत्ति दो। विपत्ति तस्य संपत्ति, और वो विपत्ति उस भक्त के जीवन में संपत्ति में परिणित होती है। एक बार एक बहुत बड़ा उद्योगपति, उसने उसका एक ख्वाब था कि वो अपने लिए एक बहुत आलीशान गाड़ी खरीदे, मर्सिडीज। तो उसने एक बहुत आलीशान गाड़ी अपने लिए खरीदी और सबसे पहले दिन अब इस आलीशान गाड़ी में वो बैठे हुए सवारी कर रहा था, चला रहा था। तो हुआ क्या कि जब वो एक रास्ते से गुजर रहा था तो कहीं से बड़ी सारी एक ईंट इसकी गाड़ी के ऊपर लगी आकर। इतना क्रोधित हुआ ये व्यक्ति कि आज मैंने पहली दफा ये नई गाड़ी निकाली चलाने के लिए और कौन है उद्दंड व्यक्ति जिसने ईंट फेंक कर मारी। उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोककर यहां वहां ढूंढने के लिए गया तो देखा कि एक छोटा सा बालक वो वहां पर खड़ा हुआ था। तो इस व्यक्ति ने डांटते हुए पूछा, तुमने ईंट फेंकी? उसने कहा हां। तो उसे पहले तो दो तीन लगाया जोर से कि तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्यों फेंकी ईंट। तो ये रोता हुआ ये बालक कहता है इस व्यक्ति से कि मैं यहां पर पिछले दो घंटे से खड़ा हूं और मेरा भाई जो अपंग है, जो चल नहीं सकता, वो व्हील चेयर से फिसल कर वो नीचे खाई में गिर गया है, गड्ढे में, और यहां से जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं मैं चिल्ला चिल्ला कर उनसे सहायता मांगने का प्रयास कर रहा हूं परंतु एक भी गाड़ी रुकी नहीं। तो हताश होकर मैंने सोचा कि एक ही उपाय है किसी गाड़ी को रोकने का, ईंट लेकर मारो उस गाड़ी के ऊपर। तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैंने ऐसा काम किया, परंतु यदि मेरे छोटे भाई को कोई, मैं अकेला तो निकाल नहीं सकता, यदि आप सहायता नहीं करोगे तो वो वहां से फिसल कर नीचे गिरने वाला है और उस वो खत्म हो जाएगा। तो ये व्यक्ति इस स्थिति को देखते हुए पहले तो उसके आंखों में आंसू आ गए और वो गया, ये दोनों ने इस अपंग बालक को वहां से बाहर निकाला और फिर ये अपने भाई को उस व्हीलचेयर में बिठाकर फिर से घर ले जाने लगा। और ये व्यक्ति जब अपने घर गया अपनी ये आलीशान गाड़ी ले जाकर, तो जैसे ही इसके सेवक नौकरों ने देखा कि पहले ही दिन किसी ने इस प्रकार से डेंट इसकी गाड़ी पर ला दिया है, तो उसे ठीक कराने के लिए वो ले जाने ही वाले थे, तो इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि इस गाड़ी पर ये जो डेंट है जिंदगी भर बना रहे। उन्होंने कहा क्यों? ताकि मुझे याद रहे कि जब भगवान अपनी कृपा देते हैं तो हम उसे देख नहीं पाते और हम अपने ही मस्ती में अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, परंतु भगवान जब अपनी विशेष कृपा देना चाहते हैं तो ईंट फेंकते हैं। तो इसलिए और ईंट इसलिए फेंकते हैं ताकि हम अपनी मस्ती से बाहर आकर देखें कि हमें इस संसार में क्या कुछ नहीं करना। इसलिए ये अंग्रेजी में कहा गया है, डोंट वेट फॉर दैट ब्रिक टू बी थ्रोन एट यू बाय गॉड। इसलिए भगवान हालांकि मूसलाधार वर्षा करते हैं, परंतु वो मूसलाधार वर्षा जैसे पर्वतों को शुद्ध करती है वैसे ही हमें भी शुद्ध करने के लिए है। और ये बहुत ही विशेष शिक्षा है जो हम वर्षा ऋतु में ले सकते हैं। आगे कहा गया है कि बिजली एवं वर्षा का गहरा संबंध है। क्या संबंध है? कि वर्षा से पहले बिजली कड़कती है। जैसे कि सोक्रेटस सोक्रेटस ये कहा करते थे कि एक बार ये शायद उन्हीं के जीवन में या उनके मित्र के जीवन में, कि उनके मित्र उनसे मिलने आए तो उनकी जो पत्नी उनके जीवन में, तो उनकी पत्नी बहुत खूंखार थी, बहुत तेज तरार। तो उनकी पत्नी हर समय उनको कुछ ना कुछ करने के लिए कहती और ये नहीं करते तो गाली देती। तो एक बार इनके मित्र मिलने आए तो उनकी पत्नी इतना गाली दे रही थी, गाली दे देकर बात कर रही थी, तो इनके मित्र ने सोचा ये कौन सा वार्तालाप चल रहा है। और हुआ ऐसा कि सोक्रेटस अपने मित्र के साथ बैठकर अपने फिलोसॉफी की चर्चा कर रहे थे, तब ये पत्नी गाली देते हुए बाथरूम में गई और इतना ज्यादा क्रोधित हुई कि बाथरूम से बाल्टी भरकर पानी फेंका सोक्रेटस के ऊपर। तो ये मित्र सोक्रेटस की तरफ देखता है, ये क्या माजरा है भाई। तो सोक्रेटस ने कहा, पहले बिजली कड़क रही थी, अब बादल बरस रहे हैं। भाई बादल बरसने से पहले तो बिजली कड़केगी, तो अब तक केवल बिजली की आवाज सुनाई दे रही थी, अब बादल बरसे हैं। तो हालांकि यहां पर सुखदेव गोस्वामी दूसरी शिक्षा दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बद्ध जीवात्मा की जो बद्ध स्थिति है, उसकी बद्ध स्थिति को पहले शुद्ध भक्त देखता है। जैसे कि वर्षा होने से पहले बिजली कड़कती है, तो मानो भगवान फोटो ले रहे हैं फ्लैश, कि भगवान हमारी स्थिति का पहले फोटो लेते हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे लेता ना, वो हमारी फोटो को दिखाता है, देखो। परंतु वो फोटो लोग फ्रेम करके नहीं रखते, एक्सरे, वो अंदर की हमारी बीमारी की फोटो। तो वैसे ही ये जो एक्सरे का फोटो शुद्ध भक्त पहले लेते हैं, जैसे बिजली पहले कड़कती है, रोशनी आती है और फिर बादल बरसते हैं, तो पहले शुद्ध भक्त हमारे बद्ध स्थिति को देखते हैं और फिर अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि मानो कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है और डॉक्टर ने उसके बीमारी को देखा और उसे भी दिखा दिया, देखो तुम्हें कैंसर हो गया लंग का, ये देखो मैंने ठीक से देखा है, जो मैंने पढ़ाई की 5 साल बराबर एकदम बीमारी तुम्हारे खोज कर निकाली है, यहां पर तुम्हें वो कैंसर और ऐसे बढ़ने वाला है और ऐसे तुम्हें मारेगा, जाओ। यदि उसे ये सब बताकर जाओ अभी। तो फायदा क्या उस डॉक्टर का, उसके साथ उसे उसका इलाज भी देना है। तो वैसे ही एक शुद्ध भक्त वो हमारी स्थिति जान लेते हैं कि हमारी बीमारी क्या है, और उसके साथ साथ फिर उपचार भी देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वैसे ही वर्षा ऋतु में हम क्या देखते हैं कि बिजली कड़कती है, रोशनी होती है और फिर वर्षा होती है। तो बचपन में जब छोटा सा बालक अपने पिता से पूछता है कि ये बादल बरसने से पहले बिजली क्यों कड़कती है, तो पिताजी कहते हैं वो बादल देखना चाहते हैं कहां बरसों। तो वैसे ही शुद्ध भक्त पहले देखना चाहते हैं कि कौन 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 सी स्थिति में है अपनी बद्ध अवस्था के, और फिर वो अपने कृपा की वर्षा करते हैं। तो ये पांचवी शिक्षा, ये एक बहुत ही सुंदर मुआयना सुखदेव गोस्वामी ने किया है कि इंद्रधनुष जो वर्षा ऋतु में ही पाया जाता है, आप लोगों ने देखा है इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष होता है वो बनता कैसे है, सूर्य प्रकाश एवं वर्षा के सहयोग से ही दिखता है। तो दिखने में इंद्रधनुष बहुत सुंदर है, परंतु इंद्रधनुष की सुंदरता तभी दिखती है जब सूर्य और वर्षा एक साथ हो। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन को भी यदि हमें इंद्रधनुष के समान सुंदर बनाना है तो हमारे जीवन में सुख दुख ये दोनों का तालमेल ठीक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल सुख ही सुख चाहता है और यदि कोई व्यक्ति केवल दुख ही दुख भोग रहा है, तो केवल सुख और केवल दुख ये उसके जीवन को इंद्रधनुष के समान सुंदर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि यदि उसके जीवन में केवल सुख ही सुख है तो वो व्यक्ति उस सुख का अनुभव उतनी गहराई से नहीं कर पाएगा जैसे कि उस व्यक्ति जिसके जीवन में दुख आए हैं और फिर सुख की अनुभूति उसे होती है। जैसे निर्जला एकादशी के बाद जो पानी का स्वाद आता है वो हर दिन नहीं आता, तो वैसे ही इंद्रधनुष की सुंदरता यदि हमारे जीवन में आनी है तो ये दोनों का सहयोग, सूर्य और वर्षा, वैसे ही सुख और दुख, ये दोनों का सहयोग ये होना होगा, तब जाकर वो होगा। और इंद्रधनुष भगवान श्री कृष्ण के गुणों का सूचक है। कैसे, बहुत ही सुंदर शिक्षा सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कैसे इंद्रधनुष भगवान श्री कृष्ण के गुणों का सूचक है। देखिए इंद्रधनुष ये एक धनुष है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं रेनबो, तो ये एक धनुष है और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ती है उसकी डोरी से। तो मान लीजिए बिना डोरी का कोई धनुष हुआ, कोई आपको धनुष लाकर दे बिना डोरी का और कहे चलाओ तीर, ये उसी प्रकार से हो गया कि मानो कोई आपको बंदूक लाके दिया है और वो बंदूक का कोई ट्रिगर नहीं, क्या कहते हैं उसे, टेटवा, और आपको हाथ में गोली लाकर दिया, ये लो ये हाथ में गोली लो, ये बंदूक, वो क्या गोली फेंक के मारेगा दूसरे। तो धनुष बिना डोरी के किस काम का। तो ये जो एक धनुष है, कहा गया है कि केवल एक ही धनुष है जो बिना डोर के है और वो है इंद्रधनुष। यही एक धनुष है जो बिना डोर के टिका हुआ है। तो प्रत्यंचा किसी धनुष की तभी चढ़ पाएगी जब डोर ठीक से बांधी होगी, परंतु ये जो इंद्रधनुष है ये अपने अपने आकार में स्थित है बिना डोर के। समझ में आ गए? तो भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है अब इसका? क्योंकि संस्कृत में डोर को गुण कहते हैं, रस्सी को गुण कहते हैं संस्कृत में, और भगवान श्री कृष्ण वो इंद्रधनुष हैं जो कि निर्गुण हैं। उन्हें किसी भौतिक गुण या डोर की आवश्यकता नहीं है अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो ये तात्पर्य थोड़ा गहरा है, ये शिक्षा थोड़ी गहरी है कि जैसे इंद्रधनुष बिना डोर के बिना गुण के टिका हुआ है अपने आकार में, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कोई भी भौतिक गुणों से आच्छादित नहीं होते हुए भी गुणवान है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण को उपनिषद में निर्गुण कहा गया है, उसका अर्थ है कि वो उस इंद्रधनुष के समान है जिसके अंदर सारे गुण हैं परंतु एक गुण नहीं, रस्सी नहीं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर सारे गुण हैं परंतु भौतिक नहीं, सारे आध्यात्मिक हैं, दिव्य गुण हैं, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा गया है। तो ये बहुत ही गहरी शिक्षा इंद्रधनुष को देखते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। आठवीं शिक्षा कि वर्षा ऋतु में जो किसान सन्यासी एवं जो विरक्त होते हैं वो अपना निर्वाह इकट्ठा करते हैं वर्षा ऋतु में। कैसे? किसान वो वर्ष पूरे वर्ष भर काम नहीं करते, उनका जो भी उनका उपज है वो वर्षा ऋतु पर निर्भर करता है कि वर्षा कैसे होगी उस पर निर्भर करता है कि क्या उपज वर्ष भर आएगी उस किसान की, फसल कैसी होगी। अब इसका संबंध किसी सन्यासी या विरक्त से कैसे किया गया? जैसे कि ये चार महीने जो हम 18 से शुरू किए हैं चातुर्मासी के चार महीने, ये जो चार महीने हैं इन चार महीनों में जो सन्यासी विरक्त होते हैं वो भ्रमण नहीं करते, वो एक जैसे चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास में वो दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट के घर पे रहे, चार महीना रहे वो, क्योंकि वेंकट भट्ट वो बहुत चतुर थे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कह दिया कि आप सन्यासी हैं और चातुर्मास शुरू हो गया और एक सन्यासी को चातुर्मास में भ्रमण नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत से जीव जंतु फिर पैरों के नीचे आकर मर सकते हैं और फिर भ्रमण करने में तकलीफ होती है, और विशेष कारण ये कि वो चार महीना ये विरक्त और सन्यासी ये शास्त्र अध्ययन में लगाते हैं। जैसे कि किसान वो मेहनत करता है वर्षा के उन चार महीनों में ताकि साल भर वो अपनी फसल को ठीक से रख सके, उसी प्रकार से एक सन्यासी विरक्त उन चार महीनों में चातुर्मास के वर्षा के अध्ययन में रखता है शास्त्र के, ताकि फिर वो ज्ञान पूरे वर्ष भर सबको बांट सके। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन में भी हमें इतना ज्ञान और इतना साक्षात्कार अर्जित कर लेना चाहिए ताकि इस मनुष्य जीवन के पश्चात हमारा अगला जीवन उज्जवल रहे। जैसे कि किसान और सन्यासी वो उनका निर्वाह निर्भर करता है वर्षा ऋतु में वो जो मेहनत करते हैं उसके ऊपर। स्वाति नक्षत्र सीप एवं मोती का संबंध वर्षा ऋतु में पाया जाता है। ये सुंदर उदाहरण नीति शास्त्र में दिया गया है कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा का एक बूंद जब सीप, सीप जानते हैं आप, ये कंपनी का नाम नहीं बोल रहा मैं, ऑयस्टर, अंग्रेजी में जिसे ऑयस्टर कहते हैं, अब मराठी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, शिमला, शिमला, समझे आप लोग। तो वर्षा का एक बूंद जब सीप के अंदर प्रवेश करता, और बहुत कठिन है वर्षा के एक बूंद को उस शिमला में प्रवेश करना, परंतु यदि वर्षा का एक बूंद उस सीप में प्रवेश कर जाए, और वो भी स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र के वर्षा के उस बूंद ने यदि प्रवेश कर दिया उस सीप के अंदर, तो वो किस में परिणित हो सकता है, वो वर्षा का एक बूंद मोती में। तो ये उदाहरण दिया गया है कि बद्ध जीव जब वो भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है, तो वो हालांकि जल के समान हो, परंतु भक्त के संपर्क में आने के वजह से वो बहुमूल्य मोती जैसा बन सकता है। तो हम हमारी स्थिति की तुलना कर सकते हैं कि हम इस कृष्ण भावनामृत हरे कृष्ण महामंत्र के संपर्क में आए, और वो भी कलयुग में, और वो भी कौन से कलयुग में, जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु युगावतार बनकर आए, और उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र हम सबको इतने सरल तरीके से देकर गए। तो चैतन्य महाप्रभु का इस कलयुग में आना स्वाति नक्षत्र के समान, और हम वो जीव जो इस स्वाति नक्षत्र के उस वर्षा के बूंद के समान, जो कि इस हरे कृष्ण आंदोलन के सीप में कैसे तो घुस गए। तो हमें करना क्या है, केवल उस सीप में रहना है और अपने आप हम मोती में परिणित हो जाएंगे। और यदि हम इस संपर्क को छोड़ दें, तो फिर जैसे कई बार कुत्तों का नाम भी मोती होता है ना, बहुत से कुत्तों को पता नहीं ये नाम क्यों देते हैं, मोती मोती, तो फिर वो मोती बनना पड़ेगा। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें कौन सा मोती बनना है, कौन सा मोती बनना है, शिंपले वाला, सीप वाला मोती। तो ये एक सुंदर शिक्षा हम इस स्वाति नक्षत्र के वर्षा के बूंद से ले सकते हैं। और अंतिम शिक्षा कि वर्षा ऋतु में मोर का उत्साह एवं चातक का समर्पण। मोर का उत्साह इतना देखा जाता है कि जब भी मोर वर्षा ऋतु में घने बादलों को मोर देखता है, तो मोर अपना पिसारा पूरा खोलकर मोर नृत्य करना शुरू करता है, और मोर कभी अपना उत्साह कम नहीं करता पूरे वर्षा ऋतु में। जितनी बार अब वर्षा ऋतु में जो घने बादल हैं वो तो 24 घंटे कई बार छाए हुए होते हैं ऊपर, परंतु मोर अपना उत्साह कभी कम नहीं करता, और पूर्ण उत्साह से वो स्वागत करता है उन बादलों का। वैसे ही यहां पर यह शिक्षा दी गई है कि एक शुद्ध भक्त का उत्साह उस मोर के समान होना चाहिए, कि जैसे ही घनश्याम उन बादल का स्मरण भी आ जाए, जैसे मोर जब उसे यह भी पता लग जाता है कि वर्षा ऋतु के बादल आ रहे हैं, आए भी नहीं है, उससे पहले मोर नाचने लगता है। तो एक शुद्ध भक्त ये जो घनश्याम रूपी बादल उसके जीवन में आता है भगवान श्री कृष्ण, तो उसका उत्साह इस प्रकार से बना रहना चाहिए जैसे मोर घने बादलों को देखकर अपना उत्साह दिखाता है। श्रील प्रभुपाद फिर एक मॉर्निंग वॉक पर थे, और श्रील प्रभुपाद ने देखा कि एक सरोवर में कुछ बदक वो अपनी चोंच से जोर जोर से आवाज कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने श्रील प्रभुपाद और अन्य शिष्यों को देखा। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि कुछ प्रसाद है किसी के पास? तो भक्तों के पास प्रसाद तो रहता ही है, किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए तो जेब में यहां वहां कुछ तो रहता ही है। एक भक्त के पास कुछ लड्डू थे, तो लड्डू का चूरा प्रभुपाद ने किया और प्रभुपाद उन बदकों को डालने लगे। और श्री प्रभुपाद ने देखा कि उनमें से कुछ दो बदक जो थे वो सबसे ज्यादा प्रसाद ले रहे थे श्री प्रभुपाद के द्वारा दिया गया। तो श्री प्रभुपाद ने अब पूछा, देखो ये दो सबसे ज्यादा प्रसाद कैसे ले पा रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जोर से आवाज कर रहे हैं, दे आर क्वैकिंग द लाउडेस्ट, प्रभुपाद ने कहा। इसलिए प्रभुपाद ये शिक्षा दे रहे थे कि जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम अति तीव्रता से लेंगे, इनके अंदर तीव्रता देखो उस प्रसाद को लेने की, जब हम भगवान का नाम इतनी तीव्रता से लेंगे तब भगवान की कृपा उनका प्रसाद हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिल पाएगा। तो ये उत्साह, प्रभुपाद कहे दिस इज कॉल्ड ईगरनेस। जब उन बदकों को देखा जोर जोर से वो जो चोंच हिलाकर आवाज कर रहे थे, तो उनके उत्साह को देखकर श्रील प्रभुपाद ने कहा वी शुड हैव ईगरनेस लाइक दीज डक्स टू हैव कृष्णा इन अवर लाइफ। तो ये मोर से हम शिक्षा ले सकते हैं। और चातक, चातक की शिक्षा तो हम बहुत बार सुने हैं कि चातक और किसी से संतुष्ट नहीं रहता, चाहे बिस्लरी पानी लाकर दो, चाहे कोई भी मिनरल वाटर लाकर दो, चातक केवल जो बादल से गिरा हुआ स्वाति नक्षत्र का वो जल, केवल चातक उसे ही ग्रहण करता है। तो एक शुद्ध भक्त, उसकी चेतना भगवान श्री कृष्ण से कभी हटती नहीं, चाहे वो भगवान उनके ऊपर बिजली बरसाएं या वो स्वाति नक्षत्र का वो जल। कई बार चातक मर जाते हैं प्रतीक्षा में, वो अपनी चोंच खुला रखकर बादलों की ओर देखते हैं, तो कई बार वर्षा से पहले बिजली कड़क कर वो चातक को मार देती है बिजली। परंतु अन्य जो चातक हैं वो अपना विश्वास फिर भी कम नहीं करते, वो फिर भी खड़े रहते हैं कि उन्होंने देखा है कि उनके किसी मित्र के ऊपर यही बादल जिसको हमने अपना समर्पण कर दिया है इसने बिजली से मार दिया। परंतु दूसरे चातक वो कभी भी अपना समर्पण कम नहीं करते उसी बादल के प्रति। और फिर से ये बादल कौन है एक भक्त के जीवन में? भगवान श्री घनश्याम। एक बहुत ही सुंदर कथा मुझे आज ही किसी ने भेजी, तो मैं सोचा कि इसके संदर्भ में है। एक टीसी टिकट कलेक्टर, वो ट्रेन में टिकट कलेक्ट कर रहा था, बहुत से वहां पर पैसेंजर थे उस ट्रेन में। तो टिकट कलेक्टर को एक बटवा मिला, नीचे गिरा हुआ एक बटवा मिला। तो उसने बटवा खोल कर देखा, उसमें कुछ पैसे थे और उसमें भगवान कृष्ण की एक तस्वीर थी। तो टिकट कलेक्टर ने वो बटवा ऊपर कर सभी को पूछा, पैसेंजर को पूछा कि किसी का बटवा गिरा है? तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो हाथ में लाठी लिए हुए और बाल भी पूरे सफेद और दांत भी अंदर नहीं थे कुछ ज्यादा, तो ये बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हाँ ये मेरा बटवा है। तो टिकट कलेक्टर पूछता है कि कैसे सिद्ध करोगे तुम कि तुम्हारा बटवा है? तो वो बूढ़ा व्यक्ति टीसी से कहता है कि उस बटवे को खोलो, उसमें भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर तस्वीर होगी। तो टीसी अब इस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि भाई लोग तो अपनी तस्वीर रखते हैं बटवे के अंदर, तुमने ये भगवान कृष्ण की तस्वीर क्यों रखी है बटवे के अंदर? तब ये बूढ़ा व्यक्ति, इसका उत्तर सुनिए। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ये बटवा मेरे साथ बचपन से है, मेरे माता पिता ने मेरे पॉकेट मनी के लिए मुझे ये बटवा दिया था जब मैं स्कूल जाया करता था, और क्योंकि मेरे माता पिता मुझे पॉकेट मनी दिया करते थे तो मुझे मेरे माता पिता बहुत प्रिय लगते थे, इसलिए मैंने अपने माता पिता का तस्वीर रखा था जब मैं स्कूल में था। और जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ और बड़ा हुआ तो मैंने जब अपने आप को देखा कि मैं अब सुंदर दिखने लगा हूं, तो मैंने सोचा कि अब इस बटवे में मेरी तस्वीर होनी चाहिए। तो मैंने अपने माता पिता की तस्वीर निकाल दी क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, और फिर मैंने अपनी तस्वीर रखी क्योंकि अब मैं सुंदर था। और फिर मेरा विवाह हुआ, तो जब विवाह हुआ तो मुझे पता लगा कि अरे मेरे जीवन में मुझसे भी ज्यादा सुंदर है मेरी पत्नी, कम से कम उस वक्त तो। तो फिर मैंने अपनी तस्वीर निकाली और अपनी पत्नी की तस्वीर उस बटवे में रख दी, और फिर हर दिन मैं अपनी पत्नी की सुंदर तस्वीर को देखा करता। और फिर जब मेरा पहला बेटा हुआ, वो तो इतना सुंदर था, इतना मासूम दिखता था, तो मैंने अपनी पत्नी की तस्वीर निकालकर अपने बेटे की तस्वीर उसमें रख दी। और फिर वो बेटा बड़ा हुआ, परंतु उसकी सारी सुंदरता जाती रही क्योंकि उसने मुझे ढकेल दिया घर के बाहर और मुझे अनाथालय में डाल दिया, वृद्धालय में मुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया। और तब मुझे किसी ने लाकर ये भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दी, और तब मुझे पता लगा कि मेरे असली संगी साथी हैं यही, जिनकी सुंदरता कभी कम नहीं होने वाली और जो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाने वाले। इसलिए मैंने सोचा कि बचपन से मुझे इनकी तस्वीर रखनी चाहिए थी और मैं इस संसार के बद्ध जीवात्माओं की तस्वीर रख रहा था, सोच रहा था कि ये सुंदर हैं, वो सुंदर हैं, परंतु सबकी सुंदरता जाती रही, मेरे माता पिता, मैं स्वयं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबकी सुंदरता जाती रही, केवल यही हैं जिनको मुझे अपना सर्वस्व अर्पण तब से करना चाहिए था, परंतु कम से कम अब तो मैं करूं। इसलिए मैंने इन सब की तस्वीर निकाल कर केवल इन भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर अपने बटवे में रखी। ये टीसी ने बटवा लौटाया, वो जो स्टेशन पर उतरा, स्टेशन पर उतरते ही उसने ढूंढना प्रयास किया कि भगवान कृष्ण की तस्वीर कहाँ मिल सकती है ताकि वो अपने बटवे में भी उनकी तस्वीर रखे, क्योंकि उसे भी इस बूढ़े व्यक्ति ने ये शिक्षा दे दी कि अंततः हमारे एकमात्र प्रेमी, हमारे एकमात्र स्वामी और एकमात्र आकर्षण के केंद्र हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे कि चातक पक्षी वो उस बादल और उस बादल से गिरा हुआ वो जो एक वर्षा का बूंद, उसे कभी उसके अलावा और किसी को नहीं ग्रहण करता, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त को उस चातक के समान समर्पित होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो हम यही शिक्षा वर्षा ऋतु से लेते हैं, अंततः मोर के उत्साह और चातक के समर्पण से, कि हम भी, हमारा जो कुछ बचा कचा ये जो मनुष्य जीवन है उसमें हम उस मोर के समान अपना उत्साह दिखाएं भगवान श्री घनश्याम के प्रति, और चातक के समान हमारा समर्पण और वो समर्पण चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा कर गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही ये चार महीने जो वर्षा ऋतु में हम अपने बिताएंगे, तो कम से कम इनमें से एक शिक्षा, एक या दो या तीन, या यदि पूरी की पूरी 20 शिक्षाएं यदि हम अपने जीवन में उतार सकें केवल वर्षा ऋतु पर गौर करते हुए, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।